पृष्ठ संख्या 199, 25। सूदन, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में पृष्ठ संख्या 200, भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये रूठ कर न चले आए होते तो मराठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इसका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल कल्पित नहीं ऐतिहासिक हैं। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतह अली के पक्ष में होकर असद खां का ससैन्य नाश करना, मेवाड़ मांडोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहटों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही गिनते चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फेहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में ऐसे व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, ग्रंथ का साहित्यिक महत्व, बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है, न जाने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातर भड़ाभर से जी उबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं। बखद बिलंद तेरी दुंदुभी धुकारन सो, दुंदु दबी जात देश से देश सुख जाही के, दिन दिन दोनों महिमंडल प्रताप होत, सूदन दोनों में ऐसे बखत न काही के, उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी, दिल्ली के दरनी बाजे आवज उछाही के, जाही के भरोसे अब तखत उमाही करें, पाही से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के, दुहु और बंदूक जहाँ चलत बेचूक, रव होत धुक धुक किलकार कहूँ कूक, कहूँ धनुष टंकार जिही बाण झंकार, भट देत हुंकार संकार मुह सूक, कहूँ देखी दपटंत गजबाजी झपटंत, अरिब्यूह लपटंत रपटंत कहूँ चूक, शमशेर सटकंत सरसेल फटकंत, कहूँ जात हटकंत लटकंत लगी झूक, दब्बत लुथिन अब्बत इक सुखब्बत से, चब्बत लोह अचब्बत सोनित गब्बत से, चुट्टित खट्टित केस सुलुट्टित इक मही, जुट्टित कुट्टित शीस सुखट्टित तेग गही, कुट्टित घुट्टित काय बिछुट्टित प्राण सही, छुट्टित आयुध हुट्टित गुट्टित देह दही, धड़धरम धड़धरम भड़भरम भड़भरम, तड़तरम तड़तरम कड़करम कड़करम, घड़क घरम घड़क घरम झड़त झरम झड़त झरम, अररम अररम अर सररम सररम, सोनित अरग ढारी लुत्थ जुत्थ पावड़े दे दारु धूम धूप दीप रजक की ज्वालिका चरबी को चंदन पुहप पलटूकन के अच्छत अखंड गोला गोलिन की चालिका नैवेद्य नीको साही सहति दिल्ली को दल कामना विचारी मनसूर पन पालिका कोट राके विकट विकट जंग जोरी सूझा भलो विधि पूजा के प्रसन्न कीनी कालिका। इसी गल धरी कन्न में बकसी मुसक्याना हमनु बुझत हो तुसी क्यों किया पयाना असी आवने भेदनु तूने नहीं जाना साह अहमद ने तुझे अपना करी माना। डोलती डरानी खतरानी बतरानी बेबे कुड़िये न बेखी अणि भी गुरु न पावा हाँ किथे जला पेऊ किथे उजले भिड़ाऊ असी तुसी को ले गीवा असी जिंदगी बचावा हाँ भट्टररा साही हुआ चंदला वजीर देखो एहा हाल कीता वाह गुरु नु मनावा हाँ जावा किथे जावा अम्मा बाबे के ही पावा जली एही गल अखे लखो लखो गली जावा हाँ। 26 हर नारायण। इन्होंने माधव नल काम कंदला और बैताल पचीसी नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधव नल काम कंदला का रचना काल संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कवित्त दिया जाता है। सोहे मुंड चंद सो त्रिपुंड सो विराजे भाल तुंड राजे रदन उदंड के मिलन ते पृष्ठ संख्या 202 पाप रूप पानी पर विघन जल जीवन के कुंड सोखी सुजन बचाव अखिलन ते ऐसे गिरी नंदनी के नंदन को ध्यान ही में कीबे छोड़ी सकल अपान ही दिलन ते भुगुति मुकुति ताके तुंड ते निकसी तापे कुंड बांधी कढ़ती भुसुंड के विलन ते। 27 ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहो चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया है, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज विलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है। या मैं कछुक बुद्धि नहीं मेरी उक्ति युक्ति सब सूर ही केरी। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है, उसमें कहीं अवधि या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस का वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का दित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहें। ब्रजविलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता गंभीरता और मर्म स्पर्शता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है, फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं। कहती जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान भूली दिखायो चंद मैं ताही कहत हरि खान। यह देत नित माखन मोको छिन छिन देती तात सो तो को जो तुम श्याम चंद को खै हो बहुरो फिर माखन कह पै हो देखत रहो खिलौना चंदा हट नहीं कीजे बाल गोविंदा पा लागो हट अधिक न कीजे मैं बलि रिसही रिसही तन छीजे जसुमति कहती कहाँ धो लीजे मागत चंद कहाँ ते दीजे तब जसुमति इक जलपुट लीनो कर मैं ले नहीं ऊंचो कीनो ऐसे कही श्यामे बहरावे आव चंद तो ही लाल बुलावे हाथ लिए ते ही खेलत रहिए नै कु नहीं धरनी पै धरिए। 28 गोकुलनाथ गोपीनाथ और मणिदेव। इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला घनाक्षरी सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयां भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था और यह संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ है। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गाँव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में कभी वे विक्षिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ भी लिखे हैं: चेत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास संवत 1858, राधा नक्षिख नाम रत्नमाला कोश संवत 1870, सीताराम गुणार्णव अमरकोश भाषा संवत 1870, कवि मुखमंडन। चेत चंद्रिका अलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशी राज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणार्णव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा वर्णित है। कवि मुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि यह कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्ध हस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही है। साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ही ऊंचे पद के अधिकारी है। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और कोई दूसरा कवि रीति काल के भीतर नहीं पाया जाता। महाभारत के जिस जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। गोकुलनाथ: सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की, गुरुजन हु पे पुनि लाज के कथान की, गोकुल अरुण चरणाम्बुज पे गुंज पुंज, धुनि सी चढ़ती चंचरीक चर चान की, पीतम के श्रवण समीप ही जुगुति होती, मैन मंत्र तंत्र के बरन गुण गान की, सौतिन के कानन में हलाहल वे हलती, एरी सुखदानी तो बजनी विछुवान की, राधा कृष्ण विलास। दुर्ग अति ही महत रक्षित भटन सो चहु ओर, ताहि घेरियो शाल्व भूपति सेन लय अति घोर, एक मानुष निकसिबे की रही कतहु न राह, परिसेना शाल्व नृप की भरी युद्ध उछाह। लही सुदेशना की सुआज्ञा नीच की चक जौन, जाय सिंहिनी पास जम्बुक तथा कीनो गौन, लग्यो कृष्ण सो कहन या भांति सस्मित बैन, यहाँ आई कहाँ ते तुम कौन हो छबि एन। पृष्ठ संख्या 204। नहीं तुमसी लखी भू पर भरी सुषमा बाम, देवी जच्छिनी किन्नरी कैश्री सची अभिराम, कांति सो अति भरो तुमरो लखन बदन अनूप, करेगो नहीं सबस काको महामनमत भूप। महाभारत। गोपीनाथ: सर्व दिशि में भिरत भीषम को सुरथ मनमान, लखे सब कोऊ तहां भूप अलात चक्र समान, सर्व थर सब रथिन सो तेहि समय नृप सब ओर, एक भीषम सहस सम रण जुरो हो तह जोर। मणिदेव: बचन यह सुनी कहत भो चक्रांग हंस उदार, उड़ोगे मम संग किमि तुम कहो सो उपचार, खाय जूठो पुष्ट गर्वित काग सुनी ये बैन, कहयो जानत उड़न की शत रीति हम बल एन। 29. बोधा: ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धि सेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में विरहा विरह वारिश नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए तब अपने विरह वारिश के कुछ कवित्व सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा, सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। विरह वारिश के अतिरिक्त इश्क नामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल कवित्व सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और मुहावरेदार होती थी, उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं। अति खीन मृणाल के तार हूते नहीं ऊपर पांव दे आवनो है, सुई बेह के द्वार सके न तहां प्रतीति को टाणो लदावनो है, कवि बोधो अनि घनी ने जहूते चढ़ी चाप न चित्त डरावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को, कयो सतक्रतु की पदवी लुटिए राखी के मुस्काहट ताको, शोक जरा गुजरान जहां कवि बोधा जहां उजरान तहां को, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहां को। पृष्ठ संख्या 205। कबहू मिलिबो कबहू मिलिबो यह धीरज ही मैं धरबो करे, उड़ते कड़ी आवे गरते फिरे मन की मन ही में सिरबो करे, कवि बोधा न चाण सरी कबहू नितही हरवा सो हिरबो करे, सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरबो करे, हिली मिली जाने तासो मिलिके जनावे हित, हित को न जाने ताको हितु न विसाहिए, होए मगरूर तापे दुनी मगरूरी कीजे, लघु वे चले जो तासो लघुता निवाहिए, बोध कवि नीति को निबेरो यही भांति अह, आप को सराहे ताही आपहु सराहिए, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आप को न चाहे ताके बाप को न चाहिए। 30 रामचंद्र। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिमन के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिमन संवत 1841 में लिखा, अतः इनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्वों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूति शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके दो कवित्व ही सामने रख देना ठीक है। नुपुर बजत मानी मृग से अधीन होत, मीन होत जानी चरणामृत झरनी को, खंजन से नचय देखी सुषमा सरद किसी, संचय मधुकर से पराग के सरनी को, रिझि रिझि तेरी पद छवि पै तिलोचन के, लोचन ये अम्ब धाय केती क धरनी को, फूलत कुमुद से मयंक से निरखी नख, पंकज से खिले लकी तरवा तरनी को, मानिए करिंद्र जो हरिंद्र को सरोष हर, मानिए तिमिर घेरे भानु की रनन को, मानिए चटक बाज जुर्रा को पटकी मारे, मानिए झटक की डार भेक भुजगन को, मानिए कहे जो वारी धार पे दवारी ओ, अंगार बरसाई बो बतावे बारी धन को, मानिए अनेक विपरीत की प्रतीति पैना, भीति आई मानिए भवानी सेवकन को। 31 मंचित। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्णचरित संबंधी दो पुस्तकें लिखी हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला यमलार्जुन पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नखशिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर दोहो चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं। पृष्ठ संख्या 206 पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं, उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कुंडल लोल अमोल कान के छुवत कपोलन आवे, डुले आपसे खुले जोर छवि बरबस मन ही चुरावे, खोर विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावे, ताके बीच बिंद रोरी को ऐसो बेस बनावे, भ्रिकुटी बंक नैन खंजन से कंजन गंजन वारे, मद भंजन खग मीन सदा जे मन रंजन अनियारे। सुरभि दान लीला। अचरज अमित भयो लखी सरिता, द्वितीय न उपमा कही समचरिता, कृष्ण देव कहाँ प्रिय जमुनासी, जिमि गोकुल गोलोक प्रकाशी, अति विस्तार पार पद पावन, उभय करार घाट मन भावन, बनचर बनज विपुल बहुपच्छी, अली अवली धुनि सुनी अति अच्छी, नाना जिनिस जीव सरी सेवे, हिंसाहीन असन सुचि जैवे। 32 मधुसूदन दास। ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेध नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु दमन, विद्युन्माली राक्षस वीरमणि शिव सूरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है, जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। सिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही बंधन करो सप्रीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, शशिकर सरिस सुभग नख पाती, प्रणत कल्प तरु तर सब ओरा, दहन अज्ञ तम जन चित चोरा, त्रिविध कलुष कुंजर घन घोरा, जग प्रसिद्ध केहरि बरजोरा, चिंता मणि पारस सुरधेनु, अधिक कोटि गुण अभिमत देनु, जन मन मानस रसिक मराला, सुमिरत भंजन विपति विशाला, निरखी काल जित कोपि अपारा, विदित होए करि गदा प्रहारा, महावेगयुत आवै सोई, अष्ट धातुमय जाय न जोई, अयुत भार भरि भार प्रणामा, देखिए जमपति दंड समाना, देखि ताहि लव हनि इषु चंडा, कीन्हि तुरत गदा त्रय खंडा, जिमि नभ माह मेघ समुदायी, बरसहि बारी महा झरिलाई, तिमि प्रचंड सायक जनु ब्याला, हने कीस तन लेव तेहि काला, भय बिकल अति पवन कुमारा, लगे करन तब हृदय बिचारा। 33 मनियार सिंह। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है। महिम्न भाषा, सौंदर्य लहरी, पार्वती या देवी की स्तुति, हनुमत छबीसी, सुंदर कांड। भाषा महिम्न इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें आज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दुबरो है, अधर्म धूमरो न सुधि के संभारे पै, कहाँ तेरी रिद्धि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते परे वह दिखात निर्धारे पै, मनियार याते मति थकित जकित वह के, भक्ति बस धरि उर धीरज बिचारे पै, बिरछि कृपाल वाक्यमाल या पुहुपदंत, पूजन करण काज करण तिहारे पै। तेरे पद पंकज पराग राज राजेश्वरी वेद वंदनीय विरुदावली बढ़ी रहे जाकी किनुकाई पाए धाता ने धरित्री रची जापे लोक लोकन की रचना कढ़ी रहे मनियार जाहि विष्णु सेवे सर्व पोषत में से सुहु के सदा शीश सहस मढ़ी रहे सोई सुरासुर के शिरोमणि सदाशिव के भस्म के रूप व शरीर पर चढ़ी रहे अभय कठोर बानी सुनी लक्ष्मण झुकी मारिबे को चाही जो सुधारी खल तरवारी वीर हनुमंत तेही गरजी सुहास करी उपटी पकड़ी ग्रीव भूमि ले परे पछारी पुछ ते लपेटी फेरी दंतन दर दराई नखन बकोटी चौथी देत मही डारी डारी उदर बिदारी मारी लुथन को टारी वीर जैसे मृगराज गजराज डारे फारी फारी। 34 कृष्णदास ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई जिसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। एक कविता देखिए, कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज कहो बार बार कहो नर देव कहाँ पाइये दुर्लभ समाज मिलो सकल सिद्धांत जानी लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइये बानी की सयानी सब पानी में बहाय दीजे जानी सुन रीति जासु दंपति रिझाइये जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नैन न हो धन्य धन्य राधा कृष्ण ने तही गनाइये। पृष्ठ संख्या 208। 35 गणेश ये नरहरि बंदी जन के वंश में लाला कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। पहला वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश बालकांड समग्र और किष्किंधा के 5 अध्याय। दूसरा प्रद्युम्न विजय नाटक। तीसरा हनुमत 25। प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के वज्रनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश विष्कम्भक प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है, ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भये भेटी परस्पर कांत बैठ सभासद मध्य तह बोले हरि इंद्र सो विनय के कर जोरी दऊ आजु दिग्विजय हमारे हाथ आयो है मेरे गुरु लोग सब तोषित भये हैं आजु पूर्व तप दान भाग्य सफल सुहायो है कारज समस्त सरे मंदिर में आए आप देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है सो सुन पुरंदर उपेंद्र लखी आदर सो बोले सुनो बंधु दानवीर नाम पायो है। 36 सम्मन ये मल्लावा जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलिया के समान गांवों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुँह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1869 में पिंगल काव्य भूषण नामक एक कृति ग्रंथ भी बनाया पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचना काल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए, निकट रहे आदर घटे दूरी रहे दुख होए सम्मन या संसार में प्रीति करो जनी कोए सम्मन चहो सुख देह को तो छाड़ो ये चारी चोरी चुगली जामिनी और पराई नारी सम्मन मीठी बात सो होत सबे सुखपूर जेही नहीं सीखो बोली बो तेही सीखो सब धूर। 37 ठाकुर इस नाम के 3 कवि हो गए हैं जिसमें 2 असनी के ब्रह्म भट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसे मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावते या मुहावरे आए हैं। असली वाले प्राचीन ठाकुर ये रीति काल के प्रारंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलेगा, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय समय पर कवित्व और सवैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं। इनके ये 2 सवैये बहुत सुने जाते हैं, सजी सूहे दुकूलन बिज्जु छटासी अटान चढ़ी घटा जोवती है सुचिति वह सुने धुनि मोरन की रसमाती संयोग संजोवती है कवि ठाकुर वह पिय दूरी बसे, हम आंसू न सोत न धोवती हैं। धनी वह धनी पावस की रतियां, पति की छतियां लगी सोवती हैं। पृष्ठ संख्या 209। बौरे रसालन की चढ़ी डारन, कूकत क्वेलिया मौन गहना। ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजत, भौरन भीर चुपैबो चहना। शीतल मंद सुगंधित बीर, समीर लगे तन धीर रहना। व्याकुल कीन्हो बसंत बनाय, के जाय के कंत सोकाऊ कहना। असनी वाले दूसरे ठाकुर ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयू पारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझोला के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कवित्व पढ़ा और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असनी के भाट नरहर कवि के कन्या के साथ विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सत्सई वर्णार्थ नाम की बिहारी सत्सई की एक टीका देवकी नंदन टीका बनाई, अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशीराज के संबंधी काशी के नामी रईस, जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है, बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबोध रूप में पाया जाता है। दो उदाहरण लीजिए। कारे लाज करहे पलासन के पुंज तीन है, अपने झकोरन झुलावन लगी हरी। ताही को ससेटी तृण पत्रन लपेटी धरा, धामते आकाश धुरी धावन लगी हरी। ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाशन मो, आछी भांति रुचि उपजावन लगी हरी। ताती सिरी बैहर वियोग वा संयोग वारी, आवनी संत की जनावन लगी हरी। प्रात झुकाम की भेष छपाय, के गागर ले घरते निकरी थी। जानी परी न किती क अबार है, जाय परी जहां होरी धरी थी। ठाकुर दौरी परे मोहि देखी, के भागी बची भी बड़ी सुधरी थी। वीर की सौ जो किवार न देहूं, तो मैं होरी हारन हाथ परी थी। तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खटगराय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के राव राजा जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे की पुत्री के साथ हुआ था। यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपने ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे, इससे ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने भी एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा परिषद गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदे के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षित के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदे बुलाया। राजा परीक्षित वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैये पड़े कि राजा परीक्षित लौट गए। एक सवैया यह है, कैसे सुचित भय निकसो बिहसो बिलसो हरिदे गलबाही। ये छल छिद्रन की बतिया छलती छिन एक घरी पलमाही। ठाकुर वह जुरी एक भई रची है परपंच कछु ब्रजमाही। हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात की नाही। कहते हैं कि यह सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे, तब इन्होंने यह कविता पढ़ा। वे ही नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन अघात प्याला प्रेम को पिए रहे, हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बिंदी जस की दिए रहे, ठाकुर कहत मंजू कंजू तेर मृदुल मन, मोहनी स्वरूप धारे हिम्मत हिये रहे, भेंट भय समय असमय अचाहे चाहे, और लो निभाए आके एक सी किए रहे। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा, तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुरीबे में नेकु जेन मुर के, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिय के विशुद्ध हैं सने ही साचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था, हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला है। इस पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र पृष्ठ संख्या 211, दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इसमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्द भंडार है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपने स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उनसे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावत कहा करती हैं, उनके हृदय की भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संक्षिप्त वाङ्मय हैं। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे, इसी से इनकी कविताएं विशेष तरह सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता भला करना कहाँ पसंद करता, जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांग दर्शी कवि थे, इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अखती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों में मग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की शुद्रता, कुटिलता आदि पर शोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को यह कठिन समझते थे, रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़े चलने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिए यहाँ इनके थोड़े से ही पद्य दिए जाते हैं। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानो है, सीखी लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंता मनी, सीखी लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है, ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूँ बांधी यत बानो है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, 10-12-20-12 बरजी दई है जाही, एते पैन माने जो तो जरन बरन देव, कैसी कहा कीजे कछु आपनो करो न होए, जाके जैसे दिन ताही तैसी ये भरन देव, ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखो, प्रेम निह संख रस रंग विहरन देव, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तीने खेलन फिरन देव, अपने अपने सुठी गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पैरी, अंगनान में भीजे तो प्रेम परे समयो लखी मैं बलि जाऊं पैरी, अहे कहे ठाकुर दोन की रुचिसो रंग वह उमड़े तो उठाव पैरी, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटा नंद गाँव पैरी, वा निर्मोहिनी रूप की राशि जो उर हेतु न ठानती वह है, बार ही बार बिलो की घरी घरी सूरती तो पहचानती वह है। पृष्ठ संख्या 212, ठाकुर या मन की प्रतीति है जो पै स्नेह न मानती वह है, आवत है नित मेरे लिए इतनी तो विशेष की जानती वह है, यह चारहु ओर उदो मुख चंद की चांदनी चारु निहारी लहरी, बलि जो पे अधीन भयो पिय प्यारी, तो ऐतो बिचार बिचारी लहरी। कभी ठाकुर चू की गयो जो गोपाल, तोते बिगरी को सभारी लहरी। अब रह न रह यह समयो, बहती नदी पाए पखारी लहरी। पावस ते परदेश ते आए, मिले पिय अमन भाई भई है। दादुर मोर पपी हरा बोलत, तापर आनी घटा उनई है। ठाकुर वा सुखकारी सुहावनी, दामिनी कौंद की तय को गई है। रो अब तो घन घोर घटा, गरजो बरसो तुम्हें धूर दई है। पिय प्यार करे जही पैस जनी, तही की सब भातिन सैयत है। मन मान करो तो परो भ्रम में, फिर पाछ परे पछतैयत है। कवि ठाकुर कौन की कास कहो, दिन देखी दशा बिसरैयत है। अपने अटके सुने ऐरी भटु, निज सौत के माय की जैयत है। 38 ललक दास। बेनी कवि के भंडोवा से लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं, जो अपने शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 और 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है, वही इसका भी समझिए। पर इसमें सादगी है और यह केवल दोहो चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे ही किए हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयां देखिए। धरी निज अंक राम को माता, लयो मोद लखीमुख मृदु गाता। दंत कुंद मृकुता समसो है, बंधु जीव सम जीव विमोहे। किसलय सधर अधर छबि झाजे, इंद्र नील सम गंड बिराजे। सुंदर चिबुक नासिका सो है, कुमकुम तिलक चिलक मन मोहे। काम चाप सम भ्रकुट बिराजे, अलक कलित मुख अति छबि छाजे। यही विधि सकल राम के अंगा, लखी चूमत जननी सुख संगा। 39 खुमान। ये बंदी जन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रमशाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता है। अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयाम संवत 1852, लक्ष्मण शतक संवत 1855, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार, नृसिंह चरित्र संवत 1889, नृसिंह पचीसी। इसी सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। नीचे एक कविता दिया जाता है। आयो इंद्रजीत दस कंध को निबंध बंध, बोलो राम बंधु सो प्रबंध किरवान को। कोहे अंशुमाल कोहे काल बिकराल, मेरे सामू है भय न रहे मान महेशान को। पृष्ठ संख्या 213। तू तो सुकुमार यार लखन कुमार मेरी, मार बेसुमार को सहैया घमासान को। वीर न चितैया रन मंडल रितैया काल, कहर बितैया हो जितैया मघवान को। 40 नवल दास कायस्थ। ये झांसी के रहने वाले थे और समथर नरेश राजा हिंदूपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं: रास पंचाध्यायी, रामचंद्र विलास, शंका मोचन संवत 1873, जौहरीन तरंग 1875, रसिक रंजनी 1877, विज्ञान भास्कर 1878, व्रज दीपिका 1883, सुख रंभा संवाद 1888, नाम चिंतामणि 1903, मूल भारत 1911, भारत सावित्री 1912, भारत कवितावली 1913, भाषा सप्तशती 1917, कवि जीवन 1918, आल्हा रामायण 1922, रुक्मिणी मंगल 1925, मूल ढोला 1925, रहस्य लावनी 1926, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, जन्म खंड। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद नीचे देखिए। अभव अनादि अनंत अपारा, अमन अप्राण अमर अविकारा, अग अनीह आत्म अविनाशी, अगम अगोचर अविरल बासी, अकथनीय अद्वैत अरामा, अमल अशेष अकर्म अकामा, सगुण स्वरूप सदा सुषमा निधान मंजू, बुद्धि गुण गुणन अगाध वनपति से, भने नवलेश फैल्यो विशद मही में यस, बरनी न पावे पार झार फनपति से, जक्त निज भक्तन के कलशु प्रभंजे रंजे, सुमति बढ़ावे धन धान धनपति से, अवरण दूजो देव सहस प्रसिद्ध यह, सिद्धि बरदैन सिद्ध ईश गणपति से। 41. राम सहाय दास, ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रम में रहते थे। बिहारी सत्सई के अनुकरण पर इन्होंने राम सत्सई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुंचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं वह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। जहां तक शब्दों की कारीगरी और वाक् वैदग्ध से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर व्यंजना विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना, इस सत्सई में कहां। नकल ऊपरी बातों की ही हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर की दो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सत्सई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। इस सत्सई के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी हैं, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी संवत 1873 और ककहरा। वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है और वृत्त तरंगिणी पिंगल का। ककहरा जैसी की अखरावट के ढंग की मोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1760 से 1880 तक माना जा सकता है। नीचे सत्सई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। गढ़े नुकीले लाल के नैन रहे दिन रैनी, तब नाचुक थोड़ी न क्यों गाढ़ परे मृदुबैनी, भटक न झटपत चटक के अटक सुनट के संग, लटक पीत पट की निपट हट कति कटक अनंग, लागे नैना नैन में कियो कहा धौ मैन, नहीं लागे नैना रहे लागे नैना नैन, गुलफनी लागी ज्यो त्यों गयो करी करी साहस जोर, फिर न फिर्यो मुरवान चपी चित अति खात मरोर, यो विभाति दसनावली ललना बदन मंझार, पतिको नातो मानी के मनु आई उड़मार। 42. चंद्रशेखर, ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मणिराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाले में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ, अतः यह महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीर हठ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं, विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्ति विलास, नखशिख, वृंदावन शतक, गुह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी वसंत। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीर हठ ही पर्याप्त है। उत्साह की, उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। सारांश यह कि वीर रस वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मांगना, हमीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जो ध्रास किया उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ी के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे के समय गणपति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रतन सेन का गढ़ के भीतर नाच करना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन हमीर हट में रखा गया है। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बंधी हुई परपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हमीर देव का यह कह उठना कि हट करी मुंडियो युद्ध वृथा ही केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है, उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्य संध और वीरव्रती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। एक दृष्टि हमीर हट की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था, इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हमीर हट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृग्या आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पद विन्यास है। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। उदय भान पश्चिम प्रत्यक्ष दिन चंद प्रकाश है, उलटी गंग बरु बह काम रति प्रीति विनाश है, तजय गौरी अरधंग अचल ध्रुव आसन चल्ले, अचल पवन बरु होए मेरु मंदर गिरि हल्ले, सुर तरु सुखाय लोमस मरे मीर संक सब परिहरो, मुख बचन बीर हम मीर को बोली न यह कबहू टरो, आलम नेवाज सिर ताज पात साहन के गाज ते दराज को व नजर तिहारी है, जाके डर डिगत अडोल गढ़ धारी डग मगत पहार और डुलती मही सारी है, रंक जस रहत ससंकित सुरेश भयो देश देश पति में अतंक अति भारी है, भारी गढ़ धारी सदा जंग की तैयारी धाक माने ना तिहारी या हमीर हट धारी है, भागे मीर जादे पीर जादे और अमीर जादे भागे खान जादे प्राण मरत बचाए कै, भागे गज बाजी रथ पथ न संभारे परे गोलन पे गौल सुर सहमी सकाय कै, भाग्यो सुलतान जान बचत न जानी बेगी बलित बितुंड पे बिराजी बिलखाय कै, जैसे लगे जंगल में ग्रीष्म की आगी चले भाग्य मृग महिष बराह बिल लाय कै, थोरी थोरी बैसवारी नवल किशोरी सवे भोरी भोरी बातन बिहासी मुख मोरती बसन विभूषण विराजत बिमल बर मदन मरोर अनि तरकी तन तोरती, प्यारे पात साह के परम अनुराग रंगी चाय भरी चायल चपल दृघ जोरती, काम अबलासी कलाधर की कलासी चारु चंपक लतासी चपलासी चित चोरती। 43. बाबा दीन दयाल गिरी ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशगिरी को सौंप चल बसे। महंत कुशगिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेष तो गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशगिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी संयुक्तियां हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन अनुक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अनुक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनी हुई हैं। इनका अनुक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनुक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अनुक्तियाँ कही ही हैं, अध्यात्म पक्ष में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी हैं। बाबा जी को जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अनुक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद्य आए हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ श्लेष, यमक, अंतरलापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह कि एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है। अनुक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1888, वैराग्य दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी संवत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी याके सीस बीस बहु बाकी टाकी, बरने दीन दयाल चंद तुम ही चित चेतो, कूर्ण कोमल हो ही कला जो कीजे केतो, बरखे कहा पयोद इतमानी मोद मन माही, यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिह नाही, अंकुर जमिह नाही बरस सत जौ जल दे है, गरजे तरजे कहा वृथा तेरो समझे है, बरने दीन दयाल न ठौर कुठौर ही परख है, नाहक गाहक बिना बलाहक यहाँ तू बरसे, चल चकई तेही सर विषय जह नहीं रैन बिछोह, रहत एक रस दिवस ही सुहृद हंस संदोह, सुहृद हंस संदोह कोह अरु द्रोह न जाको, भोगत सुख अम्बोह मोह दुख होय न ताको, वर्णे दीन दयाल भाग बिन जाय न सकई, पिय मिलाप नित रह ताहि सर तू चल चकई, कोमल मनोहर मधुर रसुर ताल सने, नुपुर निनादनी सो कौन दिन बोली है, नीके मन ही के वृंद वृंदन सुमोतिन को, गही कै कृपाखी अब चोचन सो तौल है, नेम धरी छेम सो प्रमुद होय दीन दयाल, प्रेम को कनद बीच कब धो कलौली है, चरण तिहार जदु बंस राज हंस कब, मेरे मन मानस में मंद मंद डोली है, चरण कमल राजे मंजू मंजीर बाजे, गमन लखी लजावे हंसउ नाही पावे, सुखद कदम छाही क्रीड़ते कुंज माही, लखी लखी हरि शोभा चित्त काको न लोभा, बहु छुद्रन के मिलन ते हानि बलि की नाही, जूथ जम्बुकन ते नहीं केहरी कहूँ नसी जाही, पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, सुखी रमत सुख बन विषय कनक पिंजरे दीन। 44 पजनेश ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती और लोगों के मुंह से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नक्षिक नाम की इनकी दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित्त सवैया हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे ट, ठ, ड का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने देखिए। छहरे छबिली छटा छूटी छिति मंडल पै उमग उजेरो महाओज उजबक सी कवि पजनेश कंज मंजुल मुखी के गात उपमाधिकाति कल कुंदन तबक सी फैली दीप 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 दीपति दीपति जाकी दीप मालिका की रही दीपति दबक सी परत न ताव लखी मुख महताब जब निकसी सिताब आफताब की भबक सी पजनेश तसद्दुक ता बिस्मिली जुल्फे फुरकत न कबूल कसे महबूब चुना बदमस्त सनम अजदस्त अलाबल जुल्फ बसे मजमुए न काफ शिगाफ रुए सम क्यामत चश्म से खूं बरसे मिजगा सुरमा तहरीर दुता नुकते बिन बे किनते किनसे। 45 गिरधर दास ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरधर दास, गिरधर, गिरधारण रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 सम्मत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष के छोड़कर ही परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाला मित्र 1,00,000 रुपया तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास सम्मत 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दौहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरत्न दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं। जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार, भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वाराह कथामृत, नृसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्णचरित 4,701 पदों में, बुद्ध कथामृत, कल्की कथामृत, नहुष नाटक, गर्ग संहिता, कृष्णचरित का दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ, एकादशी महात्म्य। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण, सातों कांड पद्यानुवाद, छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककारादि सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश दल कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, धनुजारी स्त्रोत, गोपाल स्त्रोत, भगवत स्त्रोत, शिव स्त्रोत्र, श्री राम स्त्रोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कलिया कालाष्टक। इन्होंने दो ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरू हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। जरासंध वध से। चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो विधि मित्र दरद हर सरद सरोरुह बदन जाचकन बरद मरद बर लसत सिंह सम दुरद नरद दिशि दुरद अरद कर निरखी होत अरि सरद हरद सम जरद कांति धर कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत बपु काज को रणजुआ नरद वित नृप लस्यो करद मगद महाराज को सबके सब केशव के सबके हित के गज सोहते शोभा अपार हैं जब सैलन 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 ही फिरें सैलन सैल ही शीस प्रहार हैं गिर धारण धारण सो पद कंज लय धारण लय बसु धारण पार हैं अरि बारन 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 पैसुर वारन वारन वार हैं। भारती भूषण से। असंगति। सिंधु जनित गर हर पियो मरे असुर समुदाय नैन भान नैनन लग्यो भयो करे जे घाय। रस रत्नाकर से। जाहि विवाहि दियो पतु मातु ने पावक साखी सबै जन जानी साहब से गिरिधारन जू भगवान समान कहे मुनि ज्ञानी तू जो कहे वह दक्षिण है तो हमें कहा बाम है बाम अजानी भागन सो पति ऐसो मिले सबहीन को दक्षिण जो सुखदानी। ग्रीष्म वर्णन से। जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात जगमग ज्योति जाकी जग में जमती है जामे जदु जानी जान प्यारी जात रूप ऐसी जगमुख ज्वाले ऐसी जो नसी जगती है गिरिधर दास जोर जबर जवानी को है जोही जोही जलजा हूँ जीव में जगती है जगत के जीवन के जीय को चुराए जोए जोए जोशिता को जेठ जरनी जरती है। 46 द्विजदेव महाराज मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़े ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकीनाथ जी जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी ने द्विवेदी जी की दो पुस्तकें बताई हैं श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। मिली माधवी आदि क फूल के ब्याज विनोदल वा बरसायो करें रचिनाच लतागन तानी बितान सभय विधि चित्त चुरायो करें द्विजदेव जु देखी अनोखी प्रभा अलिचारण कीरति गायो करें चिरजीवो बसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन को भरी लायो करें सुरही के भार सुधे सबद सुकीरन के मंदिरन त्यागी कर अनत कहू न गौन द्विजदेव त्योही मधुभारन अपारन सो नेकु झुकी झूमी रहे मोगरे मरु अदौन खोली इन नैनन निहारो तो निहारो कहा सुषमा अभूत छाये रही प्रति भौन भौन चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन बोली हारे कोकिल बुलाए हारे केकी गन सीखे हारी सखी सब जुगुती नई नई द्विज देव की सो लाज बैरिन कुसंग इन अंगन हूँ आपने अनित तेनी ठई हाय इन कुंजन ते पलटी पधारे श्याम देखन न पाई वह मूर्ति सुधामई आवन समय में दुखदाई न भई रिलाज चलत समय में चल पलन दगा गई आजु सुभायन ही गई बाग बिलो की प्रसून की पाती रही पगी ताही समय तह आए गोपाल तिन्हे लखी औरो गयो हियरो ठगी पै दुज देव न जानी पर्यो धौ कहा तेही काल परे असुआ जगी तू जो कही सखी लोन स्वरूप सो मोह अखियान को लोनी गई लगी। बांके संकहीने राते कंज छबि छीने माते झुकी झुकी झूमी झूमी काहू को कछु गने न द्विज देव की सौ ऐसी बनक बनाए बहु भांति न बगारे चित चाहन चहुआ चैन पेखी परे प्रात जौ पे गातन उछाह भरे बार बार ताते तुम्हें बूझती कछुक बैन एहो ब्रजराज मेरो प्रेम धन लूटी बेको बीरा खाए आए कित आपके अनोखे नैन भूले भूले भौर बन भावरे भरेंगे चहूं फूली फूली किंसुक जके से रही जाय हैं द्विज देव की सो वह कूजन बिसारी कुर कोकिल कलंकी ठोर ठोर पछिताय हैं आवत बसंत के न एह जो पे श्याम तो पे बावरी बलाय सो हमारे उ उपाय है पीहे पहिले ते हलाहल मंगाय या कला निधि की एको कला चलन न पाय है घहरी घहरी घन सघन चहुदा घेरी छहरी छहरी विष बूंद बरसावे ना द्विज देव की सौ अब चूक मत दाव एरे पात की पपीहा तु पिया की धुनी गावे ना फिर ऐसो अवसर न एह तेरे हाथ एरे मटकी मटकी मोर सोर तू मचावे ना हो तो बिन प्राण प्राण चाहत तजोई अब कत नभ चंद तू आकाश चढ़ी धावे ना।